अनुवाद। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। तात्पर्य, यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी-कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य करते थे। पहले ऐसा नहीं था। पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद कर दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थीं। प्रश्न ये था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पति परायणा पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ ही मर जाए। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करे। अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपने जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए संलग्न होना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय जिसका शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, काफी आगे चर्चा चल चुकी है इस अध्याय में, लेकिन संक्षिप्त में इस अध्याय में क्या चल रहा है। जैसा हमने पिछले अध्यायों में सुना होगा कि नारद मुनि महाराज प्रचिनी बरिषद, जो कि कई प्रकार से इंद्रतृप्ति में लगे हुए हैं, उनको इंद्रतृप्ति से छुड़ाने के लिए एक प्रवचन जैसा दे रहे हैं। सीधा ये कहें राजा से कि आप इंद्रतृप्ति छोड़ दो, तो वे शायद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नारद मुनि ने एक काल्पनिक व्यक्ति जिसका नाम था पुरंजन, उसकी कहानी बतानी चालू करी। और वो कहानी के द्वारा दिखलाना चाहते थे कि किस प्रकार से पुरंजन इंद्र तृप्ति के कारण कितना कष्ट भोगा। एक तरीके से दिखलाना चाहते थे नारद मुनि पचिनी परिषद को कि ये पुरंजन और कोई नहीं, तुम ही हो। लेकिन ये ऐसा डायरेक्ट ना बोलकर इस पुरंजन की कहानी के द्वारा नारद मुनि ने ये बात महाराज पचिनी परिषद को बतलाई। तो इस पुरंजन की कथा जैसे जैसे वो आगे चल रही थी, उसमें ऐसा हुआ कि पुरंजन जो था अपनी पत्नी से इतना आसक्त था कि मरते समय अपने पत्नी का चिंतन करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए मरा, जिसके कारण हम इस अध्याय में देख रहे हैं कि उसको एक स्त्री का शरीर मिला। महाराज विदर्भ के राजा, उनकी पुत्री के रूप में पुरंजन ने जन्म लिया और उन पुत्री को वैदर्भी के नाम से भी कहा गया है। तो वैदर्भी का विवाह एक राजा, बड़े ही पराक्रमी राजा महाराज मलय ध्वज इनके साथ हुआ। और पिछले कई श्लोकों में वर्णन आता है किस प्रकार से राजा बड़े ही आदर्श राजा थे मलय ध्वज। उन्होंने अपना राज्य बड़े ही जिम्मेदारी के साथ पालन किया, संतानों की उत्पत्ति करी और सही समय आने पर उन्होंने निश्चय किया कि अभी मैं अपना राज्य का कारोबार अपने संतानों को देकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में एकाग्रित कर सकूँ। तो ऐसा सोचकर महाराज मलय ध्वज अपनी सब जिम्मेदारियों को अपने पुत्रों को देकर अपने राज्य से चल दिए। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी वैदर्भी ये भी पीछे पीछे चली गई, एक आदर्श पतिव्रता स्त्री होने के नाते। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है इसी अध्याय में कि कितना तपस्वी का जीवन महाराज मलय ध्वज ने जिया। बहुत ही कम भोजन, जड़ पत्ते फल फूल इस प्रकार की चीज़ें केवल ग्रहण करी और पानी पीकर जीवन जीते थे। इसके कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। लेकिन वैदर्भी, हालांकि वो इतने ऐशो आराम में रही थी अपने पति के साथ जब वे रानी थी, लेकिन अभी वे भी अपने पति के साथ जैसा वो तपस्या कर रहे थे ये भी करने लगी, जिसके कारण इसका शरीर भी बहुत जीर्ण हो गया, बहुत कमजोर हो गया। हर जगह इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी जहाँ पे भी मलध्वज वैदर्भी का वर्णन आता है, जो कि पूरे अध्याय में ही है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसकी तुलना गुरु और शिष्य से करते हैं। ये पूरा अध्याय गुरु कैसे होते हैं या शिष्य कैसे होते हैं, खासकर शिष्य किस प्रकार से गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, उसका वर्णन बार बार आता है इस पूरे अध्याय में। जब मलयध्वज अपना राज्य छोड़कर जंगल में गए तपस्या के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार गुरु भी जब कभी निर्जन भजन में जाते हैं अपने जीवन के अंत में, तो शिष्य को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करके या छोड़ के अपने गुरु की सेवा में जाकर पूर्ण मग्नता के साथ वो सेवा करे, जैसा कि यहाँ वेदर भी कर रही थी। और समय के साथ मलयध्वज, उन्होंने ऐसा बताया जाता है 100 देवताओं के वर्ष तक इस प्रकार से कठोर तपस्या करी और अपना ध्यान अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर एकाग्रत किया। इस प्रकार से तपस्या और भगवान का चिंतन के माध्यम से वे शुद्ध हो गए। द्वंद्वों से, जीवन के द्वंद्वों से, सुख दुख लाभ हानि इनसे परे चले गए और एकाग्रत चित्त से समाधि में वो बैठे रहे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस पूरे समय में वैदर्भी अपने पति से कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि मलयध्वज कुछ बात ही नहीं करते थे, बस ये चुपचाप अपने पति की सेवा में लगी रहती थी कई हजारों साल के लिए, अगर धरती के सालों के हिसाब से देखा जाए तो। यहां तक बताया जाता है कि वो सेवा करते करते इतने एकाग्रित चित्त से समाधि के पोज में वो बैठे थे कि पता भी नहीं चला कब उनका शरीर छूट भी गया, वो सेवा ही करी जा रही थी। तब तक सेवा कर रही थी जब एक दिन जब वो उनके पैरों को दबा रही थी तो उसको लगा बहुत ठंडे ठंडे हो गए पैर, हाथ भी ठंडे पड़ गए, और तब उसे समझ में आया कि जिस पति की वो सेवा कर रही थी वो भी रहे नहीं, अपना शरीर आत्मा शरीर से निकल के चली गई। तो पिछले कुछ श्लोकों में वर्णन आता है जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अभी गर्म नहीं है, अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। जंगल में अकेली तथा विधवा जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे कि उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। तात्पर्य में कहते हैं कि प्रतिक्रम रूप से में रानी को राजा की शिष्या माना गया है, अतः जब गुरु का मृत्यु शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के मरने से रानी रो रही थी, किंतु शिष्य तथा गुरु कभी अलग नहीं होते, किंतु जब तक क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता रहता है तब तक गुरु शिष्य के साथ ही रहता है। यह वाणी की संगति कहलाती है। आगे वर्णन आता है, वैदर्भी कह रही है, हे राजऋषि उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चारों एवं तथाकथित राजाओं से भरी हुई है, चोरों या एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। उठाने का प्रयास कर रही थी वैदर्भी अपने पति को, ये सुनेंगे जबकि राज्य में तथाकथित राजा हो गए हैं या चोर हो गए हैं तो उठेंगे वो, तो ऐसा कह रही थी वैदर्भी अपने पति को। ये संसार अत्यधिक भयभीत है, अपना कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी, मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। और फिर ये आज का श्लोक आता है, तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। अकेली थी वह, कोई नहीं था उसको इस प्रकार की चीज़ें इकट्ठे करने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करना और चिता में अग्नि लगाना। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। श्री प्रभुपाद में तात्पर्य शुरुआत करते हैं ये कहकर कि यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। आज के समय में इसको बोला जाए तो सुनने वाले को डर लगता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्यों ऐसी प्रथा थी, इतने प्राचीन समय से ये प्रथा चलती आ रही है कि जब पति अपना शरीर त्याग देता है और पत्नी जीवित है तो वे अपने पति के चिता में प्रवेश करती है। ये प्राचीन प्रथा क्यों थी, सुनने में लगता है बड़ी ही शास्त्र बड़े क्रूर हैं, ऐसी प्रथा चला के रखे हैं। आप में से किसी का क्या कहना है, ये प्रथा क्यों प्रचलित थी सालों हजारों सालों से। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे, हाथ उठाएं अगर आपको लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं तो, ये प्रथा क्यों थी। हाँ माता जी, यही भगवान धाम जाने का तरीका है क्या, पत्नी अपना बैठ के भक्ति करे वो भी चली जाएगी भगवान धाम। कितना कष्ट होगा माता जी, अगर एक जीवित व्यक्ति चलती चिता में प्रवेश करे कितना कष्ट होगा, एकदम से नहीं मरता व्यक्ति, शरीर जलता है उसका। सोचिए हमें छोटी सी कहीं आग में हाथ डालें कितना कष्ट होता है, जान बूझ कर अपने आप को चिता में फेंक देना। भगवान धाम जाने का यही तरीका है क्या, सही पॉइंट सही बोला आपने कि जो स्थान पति को मिलता है वही स्थान पत्नी को मिल सकता है अगर वह अपने पति की चिता में प्रवेश करे तो। लेकिन क्या यही तरीका है भक्तों भगवान धाम जाने का, इतना कष्टदायक तरीका। पत्नी के लिए उसके पति के जाने के बाद समाज से बहुत कष्ट आते हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कारण नहीं होता था कि पत्नी क्यों प्रवेश करती थी उस चिता में। ये ज्ञान था उसको कि मैं अगर उस चिता में प्रवेश करूंगी तो पति का गंतव्य स्थान मेरे को प्राप्त हो जाएगा, और ये भी ज्ञान था कि पति के बिना मेरा जीवन कैसा होगा, जो भी बचा हुआ जीवन है। लेकिन इसी के कारण केवल वो अपने पति की चिता में प्रवेश नहीं करती थी, इस ज्ञान के कारण। एक मिनट, जिसको बोलना है हाथ हाथ उठाएं तो ये थोड़ा डेकोरम बना रहेगा चर्चा में। हाँ प्रभु जी, क्या कह रहे हैं? मेरे देखिए, सही बोला प्रभु जी ने, पत्नी जो पति का विरह की ताप महसूस करती है वो ताप उस अग्नि से कहीं ज्यादा गर्म होता है। सही बोले आप प्रभु जी, बिल्कुल, अग्नि ठंडी लगती है उस ताप के मुकाबले जो पत्नी महसूस करती है अपने पति के विरह में। अभी आज के समय में ये बात बोलना अजीब लगता है, कोई पत्नी अपने पति से भला इतना आसक्त हो सकती है कि उसके बिना, उसके जाने के बाद उसको चिता ठंडी लगे, अग्नि ठंडी लगे, इतना विरह यानी कितना प्रेम होगा, या वास्तविक प्रेम होना चाहिए उसके लिए। आज कोई भी बोले पति पत्नी से या पत्नी पति से आई लव यू या ये सब बातें, लेकिन ये जब टाइम आता है सारा प्रेम सामने आएगा, कौन किससे कितना प्रेम करता है। आसान नहीं है। हम लोग, मैं पहले ही बताया था मैंने एक प्रवचन में भी, ब्रह्मचारियों को एक ड्रामा करके दिखा देते हैं हम लोग आश्रम में, जिसमें मैं अभी उस विस्तार से नहीं जाऊंगा उस ड्रामा में, कि एक व्यक्ति था जो अपने माता पिता भाई बहन से इतना आसक्त था, तो उसके गुरुजी उसको बोलते थे ये आसक्ति का कोई लाभ नहीं, ये जो तुम सोचते हो तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये तुम्हारे भाई बहन सब तुमसे प्रेम करते हैं, ये प्रेम करते नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता था। तो उनके गुरुजी ने उनको बोला कि ठीक है तुम एक दिन ड्रामा करो कि तुम मर गए, तब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। और उसमें पूरा कहानी में वर्णन आता है किस प्रकार से ये इस व्यक्ति ने ऐसा ड्रामा किया कि मर गया, वाकई ही गुरु की कृपा से वो ऐसा, उसका शरीर मृत जैसा हो गया, सांस नहीं चल रही थी। तो उस समय भगवान गुरु ने क्या किया, वो खुद वहां पे आए तो सब लोग रो रहे थे, उसके माता पिता भाई बहन, अरे हमारा बेटा मर गया करके, महाराज जी कुछ करिए आप। तो गुरु बोले कि एक तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा जीवित हो जाए। क्या तरीका, हम कुछ भी करने को तैयार हैं इसके लिए। तो गुरु जी बोले कि अगर आप में से कोई एक व्यक्ति इसके लिए अपना जान दे दे तो ये व्यक्ति जीवित हो जाएगा। तो उसके जो पिता थे बोले देखिए मैं तो इस घर का लीडर हूँ, मैं तो घर को पालन कर रहा हूँ, मैं चले जाऊँगा तो सारे घर का क्या होएगा, तो फिर मेरे को तो नहीं देखना चाहिए, अपनी पत्नी की तरफ देखे वो। ऐसा कह के पत्नी बोली मेरे को क्यों देख रहे हैं आप, क्यों, मेरे और भी बच्चे हैं, इन सब की देखभाल कौन करेगा, अकेले मैं ही चली जाऊंगी तो घर को, तो सारा घर का काम तो मैं ही करती हूँ, आप तो चले जाते अपने काम पे। उसने अपने दूसरे बच्चों की तरफ देखा। इस प्रकार से एक एक करके कोई मरने को तैयार नहीं था। और फिर अभी ये बच्चा जो गिर गया था, मरने का जो ड्रामा कर रहा था, ये हाथ पैर ऐसे करके एकदम गिर चुका था, सब लोग बोले ठीक है गुरुजी हम कोई बात नहीं, हम इसके इसके शरीर को चिता इसके अग्नि लगा देते हैं करके उसको उठाकर ले जाने लगे। लेकिन जब ले जा रहे थे तो वो बच्चा ऐसा हाथ पैर होने के कारण दरवाजे से निकल नहीं रहा था, शरीर बिल्कुल मृत जैसा हो गया था, कड़क। तो एक उनमें से उसके भाई थे जो बोले कि अब ये निकलेगा कैसे शरीर, तो ऐसा करते हैं दरवाज़ा को तोड़ देते हैं, चौखट निकालकर दरवाजे को तोड़कर फिर शरीर को ले जाते हैं। पिताजी बोले अभी इतना खर्चा होएगा इसके लिए, शरीर ही तो है, काट देते चलो इसके है दोनों हाथ। और वो लेके आए इसके हाथ काटने के लिए, और काटने ही वाले थे कि ये बच्चा कूद कर खड़ा हुआ और गुरु जी के चरणों पर जाके गिरा कि अभी मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ आज से करके वो अपने गुरु जी के साथ अपने माता पिता को छोड़कर चला गया। कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में वास्तविक प्रेम होता ही नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं, कि प्रेम में त्याग करना, स्वार्थ को तनिक भी सोचना नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्रेम का। अगर हम थोड़ा भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं किसी को जिसको हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करने में अपने स्वार्थ के बारे में अगर विचार आता है तो उस प्रेम में कुछ कमी है या मिश्रण है, शुद्ध नहीं है वो प्रेम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, जब पांडु राजा की मृत्यु हुई थी तो ये देखिए इन दोनों पत्नियों में क्या चर्चा चल रही थी। ये दोनों कह रहे थे कि हम इसकी अग्नि में प्रवेश करेंगे। दोनों लड़ रही थी, यहां पे भी लड़ रहे थे लोग, सब लोग घर वाले, लेकिन ये कहकर कि तुम मर जाओ इसके लिए, तुम मर जाओ कहकर खुद नहीं मरना चाहते थे। यहां पे कुंती और माधुरी दोनों ही चिता में प्रवेश करने को तैयार थी और दोनों में चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर महाभारत में वर्णन है उनके सोच क्या थे। माधुरी बोली कि मेरे कारण, एक्चुअली आप लोग जानते होंगे कथा तो, कि पांडु को श्राप मिला था कि अगर आप अपने किसी के साथ संभोग करेंगे तो आप मर जाएंगे। और एक दिन किसी काम वासना के वशीभूत होकर वे माधुरी के साथ भोग करने के लिए गए, जिसके कारण वे मर गए। तो माधुरी को ऐसा लगा कि ये गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे से संभोग करने के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं चिता में प्रवेश करूंगी। और वे बोली कि माधुरी बोली कुंती से कि मैं ऐसा सोचती हूं कि अगर मैं जीवित रहूंगी तो मेरे दो पुत्र और आपके तीन पुत्र, मैं इन पांचों की एक माँ जैसा देखभाल नहीं कर पाऊंगी। मेरा लगाव मेरे दो पुत्रों के प्रति ज्यादा होगा और आपके तीन पुत्रों के प्रति उतना नहीं होगा। और आप वो भाव रखती हैं, कुंती को बोली कि आपके लिए मेरे दो पुत्र आपके ही दो पुत्र के समान है, आपके अंदर वो सम भाव है जो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको जीवित रहना चाहिए और मेरे को चिता में चले जाना चाहिए। पहले तो कुंती मना कर रही थी, फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो माधुरी सारा जीवन इस क्या बोलते हैं गिल्टी को हिंदी में, पश्चाताप तो प्रायश्चित नहीं, अफसोस तो बड़ा कमजोर शब्द है, गिल्टी मतलब बहुत एक स्ट्रांग वर्ड है ये, गिल्टी फील होना, यानी बहुत समझते हैं आप सब लोग। तो कुंती को ऐसा लग रहा था कि ये सारा जीवन उस गिल्ट के साथ रहेगी, उसके अंदर उसको चुभता रहेगा कांटे के समान कि मेरे कारण मेरे पति मरे और उनके कारण मेरी ये जो कुंती जी हैं वो मरी। उन दो मृत्यु के बोझ को हृदय में लेकर सारा जीवन वो जिएगी, उसको कितना कष्ट होगा। माधुरी के कष्ट के बारे में सोचकर फाइनली कुंती ने निर्णय लिया, ठीक है आप चिता में प्रवेश करें और मैं ये जिम्मेदारी लूंगी कि इन पांचों बच्चों को पाल पोष कर बड़ा करूंगी। एक स्त्री के लिए युवावस्था में पांच छोटे बच्चों को परवरिश करना इस भौतिक समाज में रहते हुए कितना कठिन है, कुंती जानती थी। अपने आराम के बारे में नहीं सोच रही थी वो, उनके लिए ज्यादा आराम होता वो चिता में प्रवेश कर जाती तो, और उनके अंदर भी वह विरह का भाव था अपने पति के प्रति, लेकिन कुंती उस विरह को सहन करते हुए और आने वाले समय में अपने पुत्रों को पाल पोष कर बड़ा करना बिना पति के, उस कष्ट को सहने के लिए तैयार थी माद्री के लिए। देखिए कैसा एक वैष्णव सोचते हैं, वे अपने निजी स्वार्थ, निजी आनंद, अपने निजी आराम के बारे में ना सोचकर और दूसरे वैष्णव के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद माद्री जैसे ही चिता को आग लगाई गई पांडु की, उसमें जल कर उसमें कूद गई और दोनों का शरीर भस्म हो गया। तो प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं कि ये प्राचीन काल में ऐसा होता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार आने के बाद उन्होंने देखा कि अभी इस सती व्रत को कितनी गलत दृष्टि दे दी गई है कि जो स्त्री उतना प्रेम नहीं करती अपने पति से कि उसको हृदय में विरह की भावना आती है पति के जाने से, लेकिन उसके सगे संबंधी जबरदस्ती इसको जला देते हैं ये सोचकर कि भी इसको कौन मेंटेन करेगा सारा जीवन, इसकी देखभाल तो हमें खर्चा इस पर हमें करना पड़ेगा, अच्छा है मर जाए तो हमारा, सोचते हुए जबरदस्ती एक स्त्री के साथ इस प्रकार से बर्ताव किया जाता था। लेकिन हमें समझना चाहिए जो प्रथा चलती आ रही है ये बहुत शुद्ध प्रथा थी, इस प्रकार से ये आत्महत्या नहीं थी। एक तरीके से देखा जाए सहमरण आत्महत्या जैसा ही है दोनों, सहमरण और आत्महत्या, लेकिन यहाँ पे भावना बहुत अलग थी। एक साधारण व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो भूत की योनि मिलती है उसको, लेकिन उन स्त्रियों को जो अपने पति से उतना विरह महसूस करती थी, ये नहीं सोचती थी कि इसको ये भगवान धाम जाएगा, चलो मैं भी आसानी से भगवान धाम चली जाऊंगी, कौन इतनी भक्ति करेगा, यहाँ मर जाऊं मैं भी आराम से भगवान धाम चली जाऊंगी, ये इजी आसान तरीका ढूंढने के लिए चिता में प्रवेश नहीं करती थी वे। या मरने के बाद जैसे हम चर्चा कर रहे थे अभी कि बहुत कष्ट आएगा अपने पति के बिना कैसा जीवन जीऊंगी मैं, मेरे इस कष्ट को मैं सहन कर लेती हूँ। प्रेम स्वार्थ नहीं होता, तनिक भी स्वार्थ नहीं होता, अगर वाकई असली प्रेम है किसी के पास तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी पति पत्नी की चर्चा ना करके तात्पर्य में गुरु शिष्य की तो चर्चा करते हैं कि उस प्रकार का प्रेम शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति होना चाहिए, गुरु भक्त शिष्य। तो जब गुरु अपना शरीर त्यागते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य को चाहिए इन पतिव्रता स्त्री के समान अपने गुरु की चिता में प्रवेश कर जाए। या अभी हमारे संप्रदाय में तो शरीर को शुद्ध भक्तों के शरीर को जलाया नहीं जाता, या जो भी है अपना शरीर त्याग दें आप, क्योंकि अभी गुरु नहीं रहे जिसके कारण आप जी रहे हैं, जो आपकी सांस के समान है वो ही नहीं रहे फिर जीने का क्या फायदा। लेकिन एक कारण हो सकता है कि शिष्य अपने गुरु के साथ ना मरे, अनुमरणा च अनुमरणा शब्द है यहाँ पे, केवल एक कारण हो सकता है जब शिष्य गुरु के जाने के बाद भी जीवित रह सकता है, नहीं तो एक्चुअली कोई रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए शिष्य के लिए, ऐसा संबंध होना चाहिए शिष्य का, इसे ऐसे व्यक्ति को शिष्य बोलते हैं। कोई व्यक्ति शिष्य अगर अपने आप को कहलाता है कि मैं ये गुरु का शिष्य हूं, तो ये भाव, ये गुरु के प्रति आसक्ति इतनी प्रगाढ़ आसक्ति कि उनके बिना जीवन जीना का कोई कारण नहीं दिखता एक स्तर पे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं केवल एक कारण हो सकता है जब शिष्य जी सकता है, जैसे है कुंती जी, गुरु के लिए एक्चुअली मरना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू तुलना करें अगर गुरु के, प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए जीना उसके मुकाबले, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति करना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे अक्सर कहते थे कि ये नदी के भाव के विरुद्ध तैरने के समान है,
आसान नहीं है, बहुत कठिन है। भौतिक जगत, भौतिक समाज, भौतिक चेतना में उन्मत्त लोगों के बीच रहकर शुद्ध कृष्ण भक्ति कर पाना। तो गुरु के लिए जीवन जीना इस प्रकार से कि उनके मिशन, प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का मिशन क्या है, भगवान कृष्ण का मिशन, भगवान कृष्ण का उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसी प्रकार गुरु भी उनके प्रतिनिधि होने के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए ही जीवन जीते हैं, उनके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। तो शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के इस मिशन को, धर्म की स्थापना करने के लिए जो जो भी उन्होंने प्रथा चलाई है, मिशन चलाया है, उसको चलाने के लिए जीवित रहना, बस उसके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं रह जाता। एक्चुअली तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे मर जाना चाहिए, अगर उसका कोई और इच्छा है उसके मन में कि मैं क्यों जीना चाहता हूँ अब के बाद, अब गुरु का शरीर, गुरु नहीं रहे शारीरिक स्तर पे, तो एक्चुअली मुझे नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर मुझे जीना है तो केवल एक ही इच्छा से जी सकता हूँ मैं भी, एक ही कारण हो सकता है मेरे जीने का, वो है गुरु की मिशन को पूरा करने की इच्छा रखना। आर ना करी हो मने आशा, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, ये भावना ही केवल एक आदर्श शिष्य को जीने के लिए एक कारण देती है। तभी एक शिष्य सोचता है कि मैं गुरु के साथ अपना शरीर त्याग नहीं दूं। एक्चुअली धर्म को बचा के रखना समय के साथ, कलयुग के प्रवाह के साथ धर्म की ग्लानि ही होती है, लेकिन धर्म के जो तत्व हैं उसको शुद्धता से बचा के रखना इस कलयुग में, उसके लिए हमारे आचार्य बहुत परिश्रम करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। हमारे किसी भी आचार्य का आप जीवन देखें, इतनी कठिनाइयों से भरा था जीवन। तो शिष्य का मतलब आप किसी भी कठिनाई को लेने को तैयार हैं उस शुद्ध तत्व को सुरक्षित रखने के लिए। समय के साथ होता क्या है कि धर्म के केवल बाह्य रूप रह जाता है और तत्व चले जाता है। जैसा आज अगर हम देखते हैं, कुछ समय पहले दिवाली का उत्सव बना, दिवाली लोग किस प्रकार से बनाते हैं, दिवाली का कंसेप्ट क्या था चालू होने का, कि भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं, उनके आने पर एक उत्सव बनाया जाता है जिसमें भगवान पूरे शहर को, पूरी जगह को सजाया जाता है दियों से, भगवान का स्वागत किया जाता है। अब देखिए कैसा बन गया है दिवाली, लोग पटाखे जलाते हैं, इतना शोर करते हैं, इतना पॉल्यूशन करते हैं, लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सब वो गलत कार्य करते हैं जो भगवान को कष्ट पहुंचाएंगे। बस बाहर से जलाने का, दिया जलाने का या फुलझड़ी ये सब चीज जलाने का एक कस्टम रह गया, बाकी जो तत्व था वो चला गया, पूरी तरीके से चला गया। तो समय के साथ सब चीजों में ऐसा होता है। धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कल्चर के साथ चल रहे थे, वो केवल बाह्य रूप से रह जाते हैं और उसको तत्व है वो चले जाता है। तो गुरु परंपरा का ये कर्तव्य होता है कि उस तत्व को बचा कर रखें, समय के साथ तत्व ना चले जाए, उस तत्व को अपने शिष्य को सिखाएं, और शिष्य का कर्तव्य उस तत्व को पकड़े, हर चीज के पीछे तत्व क्या है उसको पकड़ कर रखें। यानी तत्व का मतलब हर कार्य के पीछे शुद्ध चेतना होना। हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, आरती गाते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, गुरु पूजा अटेंड करके श्रीमद् भागवत क्लास में आते हैं, ये एक प्रथा चल रही है, श्रील प्रभुपाद जी ने चालू करी। उस ऐसे ऐसे समय बीतता रहे, कई सालों के बाद, 10, 20, 50, 60, 100, 200 सालों के बाद, कोई सोचेगी ये रोज रोज वही आरती क्यों गाई जाती है, इतने सारे वैष्णव गीत हैं। या तो ऐसा स्तर पर परिवर्तन कर देंगे, या क्यों आरती में आना चाहिए, आरती में आकर क्या भावनाएं होनी चाहिए, क्या चिंतन होना चाहिए, उसको एक एक मैकेनिकल रूप दे देंगे समय के साथ। बस एक फट 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 क्रियाएं होनी है, एक जैसे कि पिक्चर चलती है, चालू किया खटखट खटखट करके खत्म हो गई, तो सुबह 4:30 से लेकर 4 से लेकर 9 बजे तक खटखट खटखट करके खत्म कर दिया, हो गई पिक्चर, आज देख लिया हमने सब कुछ। या कोई भी भक्ति के अंग समय के साथ उनमें खोट आ सकता है, खोट आता है सही भावनाओं में। तो शिष्य को चाहिए कि गुरु से उस भावनाओं को पकड़े कि किस चेतना में ये सब कार्य करने हैं, और उसको बचाए रखे समय के साथ, उसको फिर अपने शिष्यों को दे करके परंपरा में चलाए। इससे दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय में ही प्रकाशित होता है, केवल कान के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही अपने में पूरा नहीं है। जो भाव, किस भाव से क्या चीज की गई, उस भाव को प्रदान करना परंपरा में, उसको बचा कर रखना, ये एक शिष्य का कर्तव्य होता है। वो संभव नहीं है तब तक कि जब तक एक शिष्य को अपने गुरु से बहुत घनिष्ठ आसक्ति न हो। श्री गुरु चरण रति, चरण रति की तुलना की जाती है गुरु के आदेशों को से आसक्ति होना। श्री प्रभुपाद स्वयं का जीवन इस प्रिंसिपल का मूर्तिमान स्वरूप है। प्रभुपाद जी का जीवन का ध्येय केवल एक था, 1933 में उनको आदेश मिला कि ये महाप्रभु के ज्ञान को आप विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में फैलाएं और पुस्तकों को लिखकर उसका वितरण करें। लेकिन प्रभुपाद जी उन आदेशों को एकाग्रता के साथ उस पर चिंतन करते रहते थे। जितना शिष्य गुरु के आदेश पर चिंतन करते हैं, उतने हद तक उस चिंतन के कारण उन आदेशों में क्या गहराई छुपी हुई है वो बाहर निकल कर आती है। तो गुरु का, शिष्य का गुरु से जो आसक्ति होती है वो अगर भक्ति पे होगी तो गुरु के जाने के बाद वो बोलेगा अभी मेरे को जपा नहीं करना, अभी मेरे को अपनी सेवा नहीं करनी, क्यों गुरु चले गए, अभी क्या भक्ति करूंगा मैं। कभी हुआ कुछ भक्तों के साथ ऐसा, जब गुरु चले जाते हैं तो उनको लगता है क्या भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उनका संग नहीं मिलता अभी, तो क्योंकि वो बापू संग से ही आसक्त थे और जो संबंध है उसमें भौतिकता थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब धरती से गए, अर्जुन को विलाप हुआ, कष्ट हुआ कि भगवान चले गए, लेकिन तुरंत उन्होंने भगवद गीता पर चिंतन किया, यानी गुरु के आदेशों पर चिंतन किया। और अगर वाकई संबंध में गहराई है तो उस चिंतन से वो अग्नि शांत हो जाती है, विरह की अग्नि शांत हो जाती है और आप उस आदेशों को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तुरंत। फिर विलाप नहीं करते रहते कि अरे गुरु जी तो रहे नहीं, अभी कैसे भक्ति करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, आदेश हैं ठीक है लेकिन अभी कैसे भक्ति करेंगे। इसका मतलब हमारे हृदय में भावुकता ज़्यादा है, प्रेम में गहराई नहीं है। तो गहराई होएगी तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होंगे, और प्रसन्न करने के लिए उनके आदेश आपके पास हैं, उनके आदेश आप पालन करेंगे तो गुरु 100% प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न है तो आप खुश हैं। फिर आप विरह नहीं कर रहे कि वो चले गए हमारे साथ नहीं रहे अभी करके। तो इसलिए अक्सर हमारी संस्था में वाणी संघ पे बहुत जोर दिया जाता है, वापू संघ की आवश्यकता है, वापू संघ से बहुत इंस्पिरेशन, बहुत उत्साह मिलता है जब कभी वो वापू संघ हमें मिले। लेकिन हमारा जीवन जो चलना चाहिए वो वापू संघ पे आधारित नहीं होना चाहिए कि वापू संघ नहीं मिलेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलनी चाहिए वाणी संघ से। तो आदर्श शिष्य जो होते हैं गुरु की वाणी को चित्ते ते करिह ऐक्य, हृदय में गाड़ कर रखते हैं, उससे उनको सारी खुराक मिलती है, भक्ति की सारी खुराक उन आदेशों से मिलती है और उस आदेशों को वो बिल्कुल एकाग्रित जीवन से, एकाग्रित चित्त से वो अपने हृदय में रखकर हर क्षण जीते हैं। वो चाहे भोजन कर रहे हो बाहर से, नहा रहे हो, कुछ खा रहे, कुछ कर रहे हो बाहर से, अंदर एक ही चिंतन चलता है उन आदेशों को कैसे जीवन में उतारा जाए। बस तो चलो बाबा जी, बहुत ही अभी बहुत लंबी चर्चा है, इसको हम बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं सिर्फ ये एक बात कह के अंत कहना अंत करना चाहूँगा आज की चर्चा कि गुरु का मिशन, जैसे अभी हमारे संस्था में श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार का मिशन दिया है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए एक शिष्य को तैयारी करनी होती है। कि गुरु अपने स्तर का मिशन उसने निर्धारित किया है, जो गुरु के स्तर का मिशन है, गुरु हमसे बहुत प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वो एक मिशन बनाए हैं तो वो उनके स्तर पे वो कर सकते हैं। हमारे स्तर पे अगर हमें उस मिशन को पकड़ना है तो पहले हमें अपने स्तर को बढ़ाना होगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी को जब आदेश मिला 1933 में कि आप ये प्रचार करो, वो तुरंत प्रचार के लिए नहीं गए, अपने आप को तैयार किया उन्होंने। कई साल लगाए, 1965 में जाकर, 1965 में जाकर उन्होंने निर्णय लिया कि अभी उनको लगा कि अभी मैं काफ़ी हद तक तैयार हो गया हूँ उस आदेश का पालन करने के लिए, करके वो फिर वो विदेश गए। तो कहने का अर्थ है ये नहीं कि अभी आदेश मिल गया, मिशन पता है हमें, चलो पूरा करेंगे। क्या हम उसके लिए हृदय से तैयार हैं? तो यहाँ बताया गया है कि पत्नी को एक भक्त की सूचित किया जाता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब वो समय आए, यानी गुरु जब शरीर छोड़ के जाते हैं, उस समय तक हमको तैयारी करनी चाहिए कि हम उनके मिशन के अनुसार जीवन जी सके। उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद वो गुरु जो हैं मिशन के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, यानी आदेश के रूप में उपस्थित हैं। आदेश का संग करना मतलब गुरु के संग करने के समान हमें लगना चाहिए। ये तभी संभव है जब संबंध बहुत घनिष्ठ है। तो तैयारी करना, श्री प्रभुपाद जी का जीवन तैयारी का ही जीवन था। सिर्फ आखिरी के 12 साल उन्होंने आदेश का पालन किया, लेकिन क्या कर दिया फिर उन्होंने, जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता था, साधारण इंसान नहीं कर सकता था, वो किया क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले अपने आप को तैयार किया। एक्चुअली प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनको इस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं थी बाह्य रूप से, लेकिन उन्होंने ये उदाहरण दिखलाया। उसी प्रकार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी गौड़ीय मठ का प्रचार करने से पहले वो 10 साल रहकर एक रोज 192 माला जप करते थे, 300,000 नाम जप करते थे, तैयारी करते थे, अपने आप को तैयार किया, उस कृष्ण शक्ति से अपने भरा, जिसका फिर उन्होंने बाद में, जिसकी शक्ति, जिसकी कृपा से उन्होंने प्रचार वो कर पाए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लेसन है कि हाँ, हमें अपने जीवन का लक्ष्य केवल गुरु के आदेशों को पूरा करने में लगाना है, लेकिन हमें भावुकता के स्तर पर नहीं करना वो आदेश का पालन, वाकई अपने आप को तैयार करना है। तो जब तक गुरु का सानिध्य मिलता है, शारीरिक स्तर पर वापु संघ मिलता है, उस वापु संघ की मदद से और वाणी संघ की मदद से अपने हृदय को तैयार करना है। जो रूपा जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम दिया है, शास्त्र दिए हैं, इनका गहराई से पढ़ना, अध्ययन करना और उनके द्वारा, गुरु के द्वारा बताई गई सेवाओं को करना, इसके माध्यम से धीरे 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 हमारा हृदय तैयार होता है उस समय तक के लिए कि जब गुरु का वापु संघ हमारे पास नहीं होगा, तो हम उसके बाद हम उस उनके आदेश को के माध्यम से बाकी के जी पाएंगे। तो ये शिष्य का जीवन एक साधारण, एक बहुत आरामदायक, आराम का जीवन नहीं है। शिष्य बनने का मतलब एक हम जंग लड़ने को तैयार हो रहे हैं। जब तक गुरु हैं तब तक उनके सानिध्य में रहकर जितना भी संघ मिल सके उस संघ के माध्यम से हृदय को तैयार करें, और जब गुरु शरीर के शारीरिक स्तर पर नहीं है तो उन आदेशों को गहराई से जीवन में उतार कर उनके अनुसार हर क्षण, उसके बाद हमारा जीवन का केंद्र वही होना चाहिए बस, कि उन आदेशों को साथ में लिए चलते रहें। उसके द्वारा हम गुरु के सानिध्य में शाश्वत काल तक रह सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैंने जैसे बतलाया माता जी का प्रश्न है कि भक्त की पत्नी को तैयार रहना चाहिए। पहले तो कितने पत्नियां हैं जिनके पास शुद्ध भक्त के रूप में पति हैं, शुद्ध भक्त के रूप में। तो फिर वही बात आती है कि आज के समय पर यह प्रथा का हम प्रैक्टिकल रूप से अनुकरण नहीं करते, नकल नहीं करते कि करना है ऐसा। स्त्री को तैयार होना चाहिए, लेकिन ये पूरी एक वो है, एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। पति को इतना योग्यवान होना चाहिए कि वो अपने पति के पत्नी के हृदय से उस कृष्ण भक्ति को निकाल सके। एक्चुअली पत्नी का शुद्ध भक्त पति से प्रेम होना कृष्ण से प्रेम होने से ज़्यादा अभिन्न नहीं है। एक शुद्ध भक्त से प्रेम होना और कृष्ण से प्रेम होना एक ही है। तो पहले तो पति को शुद्ध भक्त होना चाहिए और फिर उसकी शुद्ध भक्ति से अपने पत्नी के हृदय से वो उस प्रकार का प्रेम को उमाड़ सके, ऐसे उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब वो जीवित है पति को अपनी पत्नी के प्रति ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। ये वो तैयारी है जो पति करता है पत्नी के प्रति, जिससे कि माध्यम से जब वो शरीर छोड़ेगा अपना तो पत्नी एक्चुअली तैयार है, हृदय से वो तैयार है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी नहीं बोले कभी भी हमारी संस्था में कि पत्नी को फिजिकली रूप से शारीरिक स्तर पर पति की चिता में प्रवेश कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोले। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो कहा, जो तात्पर्य में उन्होंने लिखा है कि पति के अगर पति शुद्ध भक्त भी है और पत्नी तैयार भी है तो उसको अपने पति के आदेशों के अनुसार अपना जीवन बाकी का जीवन जीना चाहिए। तो तैयारी होने का मतलब नहीं कि चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन गुरु के आदेश, पति के आदेश को, क्योंकि उस स्त्री के लिए उसका पति गुरु के समान है। तो एक्चुअली पत्नी पत्नी का संबंध गुरु शिष्य का संबंध जैसा ही होता है, उसके लिए पति को आदर्श होना पड़ेगा। आदर्श पति अगर है तो उसकी पत्नी अपने आप समय के साथ आदर्श बन जाएगी। पति फर्स्ट क्लास है, पत्नी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। पति फर्स्ट क्लास नहीं है तो पत्नी के लिए बहुत मुश्किल है फर्स्ट क्लास पत्नी बनना या भक्त बनना। तो तैयारी करना मतलब पति की तैयार, पति की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को तैयार करे शुद्ध भक्त बनने के लिए। और कैसे, उसको खुद को पहले शुद्ध भक्त बनना होगा, जो कि उसको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा अपने गुरु से। तो गुरु पति को शुद्ध भक्त बनाते हैं, फिर पति अपनी पत्नी को शुद्ध भक्त बनाता है और पति पत्नी मिलकर अपने बच्चों को शुद्ध भक्त बनाते हैं। ये प्रक्रिया चलती है। तो पहले आइडियली आदर्श रूप से तो पति को या पुरुष को शादी करने से पहले शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए गुरु की ट्रेनिंग से, लेकिन आज के समय में ऐसा प्रैक्टिकल होना तो बहुत मुश्किल से देखा जाता है। तो तैयारी की जो बात है, हमने जो चर्चा करी, प्रभुपाद जी ने जो हमें कार्यक्रम दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, प्रभुपाद जी की पुस्तकें और गुरु के आदेश के अनुसार जो सेवाएं हैं वो करते रहेंगे तो हमारा हृदय तैयार होगा। लेकिन किसके लिए तैयार होगा, जब गुरु या पति नहीं है तो उनके विरह में उनकी प्रसन्नता के लिए उनके आदेशों के अनुसार जीवन जीना, इसकी तैयारी करना, आदेशों में गुरु को महसूस करना, इसकी तैयारी करना। तो तैयारी क्या है, इसको बहुत विस्तार से चर्चा किया जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में तैयारी यही जो हमें प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम दिया है, इसको और ध्यान से, इसको और गहराई से इसमें प्रशिक्षण लेना। लेकिन प्रोग्राम यही है, हमें कुछ अलग नहीं करना, प्रभुपाद जी ने हमें दे रखा है उससे अलग नहीं करना तैयार होने के लिए। लेकिन ये नहीं रेकमेंड किया कहीं पर भी कि पत्नी को शुद्ध भक्त भी क्यों न हो पति उसकी चिता में प्रवेश कर जाए। भौतिक स्तर पर माता जी आज के समय में कोई स्त्री का अपने पति से उस प्रकार से लगाव होना जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि चिता ठंडी दिखे, ये बहुत मुश्किल है। किसी शिष्य का अपने गुरु से उतना प्रेम होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। और ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता हमारी संस्था में तो कि किसी स्त्री को ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो पहले जैसा प्रभुपाद लिखते हैं जबरदस्ती जैसा हो जाएगा, है ना। कोई स्त्री को इतना प्रेम कहाँ देखा जाता है ऐसा, किसी स्त्री के हृदय में अपने पति के प्रति इतना प्रेम है कि चिता उसको ठंडी दिखती है। उसकी तैयारी भी नहीं की, तैयारी करने का मतलब यही मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना, वितरण करना, यही सब चीज़ें हैं जो हमें दी गई हैं, इसको गंभीरता से डेली रूप से करना, यही तैयारी है और कुछ नहीं। हमारी तैयारी ऐसी नहीं जैसे कि विदर्भी ने और मलय ध्वज ने किया, जंगल में जाकर बहुत शारीरिक रूप से कठिन तपस्या करना, बहुत कम खाना, तो जाके प्रसाद लेंगे, समय समय पर प्रसाद लेंगे, लेकिन समय पर जप भी करेंगे, समय पर सुबह उठेंगे भी, प्रसाद समय पर लेंगे, बाकी चीज़ें ऐसा नहीं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।